જયપુરમાં તારીખ 28/11/81 પૂજ્ય ભાઈશ્રીની તત્વ ચર્ચા.
उसको ज्ञायक नाम तो जानने की अपेक्षा मिलता है और जानना पर्याय के बिना हो ही सकता है, तो ज्ञायक में भी पर्याय की अपेक्षा आ गई तो वो पर्याय से भिन्न कैसे होगा?
प्रश्न अच्छा है
जी.
प्रश्न तो ठीक है कि शब्द तो ज्ञायक क है. ज्ञायक शब्द में तो शब्द का अर्थ करे शब्दार्थ तो ज्ञान को करने वाला है ऐसा अर्थ निकलता है. ज्ञायक जानने की क्रिया जिसमें हो उसका नाम ज्ञायक, ऐसा शब्दार्थ निकलता है. तो पर्याय से सहित हो गया तो ज्ञायक भाव दृष्टि का विषय कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न प्रश्नकार का है. तो जिसमें पर्याय होती है, द्रव्य में पर्याय होती है, वो पर्याय में जो जानने की क्रिया आती है तो वो शक्ति की व्यक्ति है, शक्ति की व्यक्ति है. तो ज्ञायक वहां शक्ति रूप लेना, व्यक्ति रूप नहीं लेना, क्योंकि प्रमत अप्रमत से रहित है, ज्ञान की पर्याय से रहित, केवल ज्ञान की पर्याय से रहित है ज्ञायक, इसका नाम है, वो दृष्टि का विषय है. और थोड़ा दृष्टि का विषय के साथ ज्ञायक की ज्ञान अपेक्षा से कैसी संधि होती है वो बताऊं तो मेल बैठ जाएगा. के जो छठी गाथा है समय सार की, वहां से ज्ञायक का नाम शुरू हुआ है, वहां से शुरू हुआ है. पांच गाथा तक ज्ञायक ऐसा शब्द नहीं आया. तो ज्ञायक को पहले पारे में कहा, पहले पैराग्राफ में, कि पर्याय से रहित, प्रमत अप्रमत से रहित, यानी 14 गुण संसार से रहित, पर्याय मात्र से रहित, ऐसे शुद्धात्मा है, उसकी उपासना करना तो सम्यक दर्शन होता है. तो पर्याय से रहित कहा ज्ञायक को, और नीचे के पैराग्राफ में ऐसा कहा कि ज्ञाकार ज्ञेय को जानता है इसलिए वो भाव को ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है. ज्ञेय को जानता है इसलिए उसका नाम ज्ञायक प्रसिद्ध है. तो वो जानने की क्रिया वाला लिया, ज्ञेय को जानने वाला. तो जब पहले पारे पेरे में दृष्टि का विषय का नाम ज्ञायक रखा, दूसरे पारे में जो आत्मा का अनुभव हुआ अंतर्मुख होकर और कर्ता कर्म का अनन्यपना कहा કે જાણનારો માટે હું તે કરતાને જણાયો, પણ હું માટે મેં જણાયા તો મેં કરતા કર્મ, મેં યાને આત્મા કર્મ, આત્મા હિ કરતા આત્મા હિ કર્મ, એસા દો ભેદ નિકલ જાતા હૈ તબ અનુભૂતિ હોતી હૈ. તો વહાં ભી અપરિણામી કો ગાયક કહા ને પરિણામી હુઆ તો ભી ગાયક ક્યા, ઇસકા અર્થ એ હુઆ कि सारे समय सार में 415 गाथा तक दृष्टि की मुख्यता कर करके अनुभूति कैसे होवे, और अनुभूति होती है तो अनुभूति वो भी आत्मा है, सम्यक दर्शन भी आत्मा है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है, पर्याय से अभेद करके उसको भी आत्मा कहा, सारे 415 गाथा का टोटल. और छठी गाथा में सारा समय सार का रहस्य भर दिया छठी गाथा में. और छठी गाथा में एक ज्ञायक भाव में सारा रहस्य भर दिया. ध्येय भी ज्ञायक है, ज्ञेय भी ज्ञायक है. अबे जब ध्येय की बात चलती हो, ज्ञायक नाम तो एक ही है, नाम तो एक है, ज्ञायक। तो वहां तो कहा कि प्रमत प्रमत से रहित है, शुद्ध पर्याय से भी रहित है। दूसरा पारा में कहा कि शुद्ध पर्याय से सहित है। पहले पारे पेरे में शुद्ध पर्याय से रहित, दूसरा में ज्ञान की शुद्ध पर्याय प्रकट हो से सहित अनन्य कहा ने है? तो नाम नहीं बदला, ज्ञायक ही रखा। तो एक ज्ञायक शब्द में सारे सारे चौपुर का सार भर दिया है। जैसे ज्ञान मात्र शब्द आता है तो दृष्टि का विषय के में भी ज्ञान मात्र आता है, और परिशिष्ट में ज्ञान मात्र परिणामी द्रव्य, उसको नाम उसका नाम भी ज्ञान मात्र रहा। पहले पर्याय से रहित और पर्याय से सहित, दोनों में प्रयोग में ज्ञान मात्र बस। ऐसे ज्ञायक एक शब्द में दो भाव अंदर में आ जाता है। ज्ञायक है जो परिणाम से सहित है, शुद्ध पर्याय से सम्यक दर्शनान चारित्र का परिणाम से सहित है, वो स्वग्नेय है। वो स्वग्नेय में ध्येय गर्भित तो रहता है, उसका नाम भी ज्ञायक है। ज्ञायक शब्द दृष्टि का विषय का प्रयोग में भी ज्ञायक, और जब परिणमन हुआ तो भी ज्ञायक। ज्ञात ते तो तेज है, पर पदार्थ को जानने के समय अपने आत्मा ही जानने में आया, तो जानने वाला मैं हूं, जनाया भी मैं हूं, और परिणामी द्रव्य हो गया, अनुभव हो गया। तो ज्ञायक का प्रयोग दृष्टि का विषय में भी आता है, माने ये स्वग्नेय का विषय भी होता है। प्रकरण अनुसार जहां जो है ऐसा अर्थ करना चाहिए। शब्द एक है, प्रकरण अनुसार प्रयोजन की अपेक्षा से शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। शब्द एक है पर अलग अलग अर्थ निकलता है। प्रश्न अच्छा है।
शक्ति रूप ज्ञायक और व्यक्ति रूप ज्ञायक, ऐसे दो ज्ञायक की बात आपने कही, तो शक्ति रूप ज्ञायक में जानना पड़ेगा कि अपेक्षा है कि नहीं?
नहीं है।
दृष्टि का मतलब दोनों ज्ञायक है कि दोनों का अभेद है कि अकेला शक्ति रूप ज्ञायक?
दृष्टि का विषय तो अनंत गुण से अभेद एकला ज्ञायक है, पर्याय से रहित, उसमें जानने की क्रिया नहीं है, ध्रुव है। और जब ध्रुव का ध्यान किया ज्ञायक का, तो ज्ञायक जानने में आया तो भी ज्ञायक ही रहा।
ज्ञायक जानने में आया तो ज्ञायक ही रहा, ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं?
कि ना ये कहता हूं कि ये जो ज्ञायक है उसका ध्यान किया, ज्ञायक का ध्यान किया, ध्रुव का ध्यान किया, तो भी जानने के समय में वो ज्ञायक ही रहा। आत्मा को जाना तो भी आत्मा रहा, अने पर्याय आत्मा को नहीं जानती है तो भी आत्मा रहता है। आत्मा शब्द एक है, पर्याय उसको नहीं जाने तो भी आत्मा है, अने उसको जाना तो भी आत्मा ही है।
पर प्रकाशन और स्व प्रकाशन दोनों में आत्मा ही रहा,
ज्ञायक ही ज्ञायक रहा। पर को जानने के समय ज्ञायक, अने स्व को जाने उस समय भी ज्ञायक। जैसे दीवा का दृष्टांत दिया, दीवा घटपट आदि को प्रकाशता है तो भी दीवा है, अने दीवा को प्रकाशता हो तो भी दीवा है। ऐसे ज्ञेय को जाने तब भी ज्ञान का अनुभव करने से ज्ञायक ही है। ये जब जानने में आवे तब ज्ञान का अनुभव करे तो ज्ञायक है। ये के समय जानने के समय ज्ञायक का अनुभव न करे तो अज्ञान है।
ये जब जानने में आवे तो ज्ञायक का अनुभव कर सकता है, ये जानने में आया तो भी ज्ञायक का अनुभव हो सकता है?
इसका अर्थ ये है कि ये जब जानने में आया, ये जानने में आया वही समय उसका ज्ञान ज्ञायक को जानता है तो ज्ञायक हुआ, वहां लक्ष्य है तो ज्ञायक नहीं होता है।
उसके कारण नहीं होता है।
यही है तो ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान से हुआ, मगर ज्ञान में ये निमित्त जब है तब ये ज्ञान में जानने में आया, तो उसका लक्ष्य ज्ञान पर है, जगत का लक्ष्य ज्ञेय पर है। ज्ञेय जानने में आता है कि ज्ञान जानने में आता है? अज्ञानी को भी ज्ञान जानने में आता है, वो मानता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, तो दृष्टि विपरीत है। क्या कहा? ये पदार्थ है, ये पदार्थ ज्ञान में प्रतिभास होता है, तो ये पदार्थ जानने में आता है कि जो ये अपना ज्ञान में प्रतिभास होता है ऐसा ज्ञान जानने में आता है। जो ज्ञान जानने में आवे नहीं तो उसको जान सकता ही नहीं। क्या कहा? ऊर्ध्वरूप मुख्य रूप से तो सबको ज्ञान का ही अनुभव समय समय पर होता है, मगर वो ज्ञान जानने में आता है ऐसा भूल जाता है, तो ज्ञान का सामान्य ज्ञान का तिरोभाव होता है और विशेष ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है, तो अज्ञानी बन जाता है। ये जानने में आया, उसका मालिक तो नहीं, उसके पर राग द्वेष करना तो नहीं, मगर उसको मैं जानता हूं। आचार्य भगवान परमात्मा का अध्योषान है, मार्मिक बात है। बंधतिकार में आचार्य भगवान ने फरमाया कि पर को मैं मार सकता हूं, जीवाड़ी सकता हूं, सुखी दुखी कर सकता हूं, ऐसे अभिप्राय तेरा है, वो बंध तत्व अध्योषान है, वो अध्योषान है, मिथ्या दर्शन है, छोटा दोष नहीं है। ऐसे ये धर्मास्ती काय को मैं जानता हूं, आचार्य भगवान ने फरमाया अध्योषान है। तो वो जब बंध अधिकार चलते थे सोनगढ़ में, तब फुलचंद सिद्धांत शास्त्री आए थे, उस टाइम व्याख्यान सुना कि धर्मधर्मी जानने में। धर्मधर्मी क्यों लिया? कि सर्वज्ञ का मत में तो आ गया है, क्योंकि सर्वज्ञ का मत में ही धर्मद्रव्य है, अन्य मत में तो धर्मद्रव्य है नहीं। तो जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि कहां कैसी भूल करता है, जानने के बाना नीचे भाव बंद हो जाता है। जानने के बाना नीचे, करने में तो भाव बंद है, कर्ता बुद्धि में तो भाव बंद होता ही है, मगर जानने में आता है समय समय पर ज्ञान, और मानता है कि मैं उसको जानता हूं। तो व्याख्यान पूरा हो गया, सांझ को हम घूमने को जाते थे, मुरब्बी खिमचंद भाई, मैं और फुलचंद सिद्धांत शास्त्री तीन, ये जित्री का रास्ता पर घूमने जाते थे। तो रास्ता में पंडित जी ने बात उठाया कि लालचंद भाई ये क्या बात है, गुरुदेव ने कहा कि धर्मास्ती काय को जानना वो अध्योषान है, क्योंकि छह द्रव्य तो जानने जैसी चीज है, वो तो ज्ञेय है और इधर ज्ञान होता है, केवल भगवान लोकालोक को जानता है, मैं धर्मास्ती काय को जानू, इसमें क्या इतना बड़ा सोई की चोरी और फांसी की सजा, सुई की चोरी और फांसी की, ये क्या है? मैंने कहा क्या भी आधा घंटे में आप वापस जाते हैं गुरुदेव को प्रश्न करना, क्योंकि वो तो बड़ा पंडित है ने, तो उसको बराबर बैठ जाए, गुरुदेव को साक्षात पूछे तो उसको समाधान हो जाए। तो हम पहुंचे, स्तुति पूरी हुई, पहला ही प्रश्न उठाया पंडित जी ने कि आज व्याख्यान में आया कि धर्म द्रव्य जानने में आता है, उसमें अध्योषान है, लिखा है शास्त्र में, आपने भी ऐसी व्याख्या किया, तो ये क्या है? कि भाई साहब जो ज्ञान जिसका है इसको तो जाने नहीं, अने जो ज्ञान जिसका नहीं है उसको जाने तो अध्योषान अज्ञानी है। ज्ञान प्रतिमा का है कि ज्ञान आत्मा का है, मैं पूछता हूं सबको आपको आज।
आप भी पूछते तो है
आज पूछा इन्हें, मैंने विचार आयो तो कि हमारा गुरु भी खिमचंद भाई कैसे, क्या आप भी पूछते तो आज ही पूछा है, आज ही पूछा है। वो महत्व की बात है, वो छंछेड़ने जैसी बात है, ऐसी छोड़ देने जैसी बात नहीं है, प्रयोजनभूत बात है। हाँ आज ही निर्णय करना चाहिए कि ज्ञान जानने में आता है कि ज्ञेय जानने में आता है। जो जिसका अभिप्राय में है कि ज्ञेय जानने में आता है तो ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव हो गया, सामान्य का तिरुभाव, सामान्य ज्ञान का तिरुभाव हो गया। तो जो जीव को आत्मदर्शन करना है, अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है, अपने क्या करना है, अपना हित करना है, किसी को समझाना नहीं है, अपना हित करना है। ऐसे 271 नंबर का कलश है, समय सार का कलश टीका का, उसमें लिखा है कि मैं ज्ञायक हूं अने ये सठ द्रव्य मेरा ज्ञेय है। वहां भी जैन मत अनुयायी के लिए लिखा, क्योंकि 6 द्रव्य और अन्य मत में तो है ही नहीं। तो राजमल जी साहब ने फरमाया कि ऐसी भ्रांति तो अनादिकाल से चालू आ रही है। ढूंढारी में पहला था, ढूंढारी में पुस्तक था, तो ढूंढारी का मेरे को शब्द का बराबर भाव भाषण नहीं होता था। तो मेरा मित्र के शशि भाई भावनगर रहते, वहां मैं उसको कहा कि एक एक गाथा का जरा ढूंढारी का हिंदी करके यानी गुजराती करके मेरे को जरा लिख कर। तो उसको कहा कि मैं लिखता हूँ, मेरे भी स्वाध्याय हुए और मेरे काम हुए। तो ऐसा पन्ना वहां से मेरे को भेजते थे, बहुत साल पहले की बात है। बाद में तो हिंदी हो गया, नहीं बाद में तो गुजराती भी हो गया। तो उसमें लिखा है कि मैं ज्ञाता हूं, इस षट भी मेरा यही है। तो सबको पूछो तो वो तो सही है, उसमें ज्ञान हो गया प्रकट। ज्ञान तो हुआ कि ज्ञान नहीं हुआ, 6 द्रव्य का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? शांति भाई वो पक्का है, वो पक्का है, समझे भाई कुमार है ने पक्का है। आप फरमाओ ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान हुआ? हा हा हा,
स्वयं कहते जानता है, फिर ज्ञान नहीं हुआ
अज्ञान
हुआ?
मैं ज्ञाता और शब्द मेरा ज्ञेय, वहां तो ऐसा शब्द रखा कि ऐसी भ्रांति अनादिकाल से चालू आ रही है। वहां आत्मा ज्ञाता ने शब्द मेरा ज्ञेय वो व्यवहार है ऐसा नहीं लिखा है, मिथ्यात्व का दोष लिखा है। द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म गंभीर है, कोई साधारण बात नहीं है। क्या लिखा कि मैं ज्ञायक और छठ द्रव्य मेरा ज्ञेय, ऐसा व्यवहार ऐसा नहीं लिखा है वहां। भ्रांति का अर्थ क्या कि जानने में आता है तो ज्ञान समय समय पर, इससे आगे जाऊं तो आगे बढ़ूं तो ज्ञायक ही जानने में आता है, तो भी ज्ञान जानने में आता है ऐसा नहीं मानता है, ने ज्ञेय जानने में आता है ऐसा मानता है, तो भ्रांति हो गई। भ्रांति का अर्थ क्या कि पड़ी है सिंदरी दूरी अने लगे कि सर्प है सांप, तो उसका नाम भ्रांति है ने, भ्रांति रसी
पड़ी है, रसी
पड़ी है रसी, अने भासता है मानता है कि सर्प सांप नाग, तो भ्रांति है कि नहीं? ऐसे समय समय पर बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिभास हो रहा है, क्योंकि गायक में प्रमेत्व नाम का स्वभाव, ज्ञेयत्व नाम का स्वभाव है, अने प्रत्येक समय में ज्ञान जो प्रकट होता है सबके पास, उसमें ज्ञानत्व है और गायक में ज्ञेयत्व है, तो पर्याय में गायक ही जानने में आता है, अर्थात ज्ञान ही जानने में आता है, मानता है कि ये ज्ञेय जानने में आता है, तो दृष्टि विपरीत हो जाती है। जब उसका सम्यक दर्शन का काल आता है तो विचार उसका पलट जाता है कि पर ज्ञेय को मैं जानता नहीं हूं, जानने वाला जानने में आता है, तो उपयोग वहां से हटकर अंदर में आ जाता है, अनुभूति होती है, साधारण बात नहीं है।
भ्रांति कहो
का अध्योषान कहो, एक ही बात है। आहा, बंध अधिकार में लिखा, वहां ऐसा नहीं लिखा कि द्रव्य धर्म्य जानने में आया उसका नाम व्यवहार। अरे निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है, सुन तो सही। जो ज्ञान जिसका है उसको जाने नहीं, अने पर को जानने में रोके, व्यवहार कौन कहे, वो तो अध्योषान है, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, ऐसी चीज है भैया। ज्ञान जानने में आता है, घटपट आदि ने जान तेथी तेने मान, पण जाननार ने मान नहीं, केवू कहिए ज्ञान। आहा, इसे प्रोफेसर ने एक दफे परीक्षा लिया, एक हॉल के अंदर रात्रि को 9 बजे परीक्षा लिया, पेपर दिया और 100 विद्यार्थी बैठे थे, 100 विद्यार्थी ये विद्यालय का नहीं हो, अन्य 100 विद्यार्थी बैठे थे, तो पेपर में सबने लिखा जो चीज ये हॉल में हो, छोटी से छोटी चीज को लिख दिया, टांचनी है ना टांचनी, वो भी लिखा, छोटी से छोटी चीज सब लिखा, मगर 100 विद्यार्थी ने वो भूल गया कि ये हॉल में दीपक है, वो भूल गया लिखने का, तो वो पेपर जब आता था ना तो परीक्षक क्या करता है, प्रोफेसर दीपक लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है चौकड़ा, दीपक लिखा है नहीं लिखा है चौकड़ा, ज्यादा वो आइटम नहीं जोता है।
प्रश्न ये था कि हॉल में जो सामग्री है वो सब नोट करो।
हाँ, सब नोट करो, प्रश्न था, वो सामग्री सब नोट कर दो।
ट्यूबलाइट जल रही
थी। हाँ, ट्यूबलाइट जल रही, रात का 9 बजे था, रात का 9 बजे का टाइम था, समझे। हा, 100 मणे तेले अंधारा होता है, 100 मण तेले, तो कल का काम है, कल का बल का काम होता नहीं है, कल से काम हो जाता है। तो सबने चोकड़ा लगाया तो ये 100 विद्यार्थी के 100 ही खोटा, 1-2 पास नहीं हुआ कि कोई पास नहीं हुआ। साहब हमारा ये क्या भूल, बताओ तो सही कि आए हॉल में जितनी सामग्री हो इतनी मैंने लिखने को कहा था, आपने ट्यूबलाइट लिखा नहीं है। हा हा, 2 हाथ से कान पकड़ लिया,
वहां तो 100% नापास हुए,
100% नापास हुआ,
और यहाँ का महाविद्यालय का 100% पास होता।
मगर अभी वितरागी कोर्ट में पास होना बाकी है, वो भूलना नहीं।
जब यूनिवर्सिटी में पास होना बाकी है, भगवान की यूनिवर्सिटी में,
हाँ भगवान की यूनिवर्सिटी में पास होना बाकी है। परमात्मा प्रकाश जब खड़ा हुआ ने वो युवा फेडरेशन का, तब मैंने कहा कि भैया युवा फेडरेशन तो आप बनाता है, मगर आत्मा का लक्ष्य स्वाध्याय चुकना नहीं, ऐसा कहा। मूल तो यही है ना,
बॉम्बे
में मूल तो ये है ना, ये शिविर कहो, वांचन की और कक्षा कहो, सब कहो, जितना प्रोग्राम है उसकी पिछाड़ी क्या है, अपना आत्मा को जानना है, वो मूल चीज है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि ज्ञान जानने में आता है, एक दफे तू निर्णय तो कर ले कि पर का करता ही नहीं ने पर का ज्ञाता नहीं हूं, तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, कि जब व्यवहार का लोप हो जाएगा तब निश्चय का पक्ष आ जाएगा, और निश्चय का पक्षातिक्रांत होकर आनंद की अनुभूति होती है, और निश्चय नहीं भी सलाम करके चली जाती है। ऐसा पाठ है। प्रलय होता है व्यवहार का जब अनुभव होता है, विकल्प का, भेद आश्रित विकल्प का प्रलय हो जाता है। आचार्य भगवान का कथन
है,
ये अध्योषण है, मगर मैं क्या कहा कि ये जानने में आता है कि ज्ञान जानने में आता है, उस समय अकेली पर्याय पर नजर नहीं रखना, ज्ञायक जानने में आता है, ऐसा मैंने कहा था। कहा था कि नहीं? भेद से समझाने के लिए ज्ञान की पर्याय जानने में आता है, समझाने के लिए, क्योंकि वहां छोटा था ना, तो ज्ञान की पर्याय जानने में आया, ऐसा ले पहला, बाद में वो पर्याय ज्ञायक जानने में आता ही, वही पर्याय में वो ज्ञायक जानने में आता है, ऐसा एक स्टेज, एक स्टेप करके समझाने का। एक दफे 7-8 साल की, 6 साल की पहले की बात है, मुद्दा की बात, कि कार्तक सुद एकम में जिससे दिवाली बूढ़ी के लेने के लिए, दर्शन करने के लिए सब जगह से गुरुदेव के पास आते थे, बॉम्बे से भी कई आदमी गया, मैं बॉम्बे से नहीं गया जा सका, मैं बॉम्बे रहा, तो वहाँ से लौट कर आया तो कहा मुमुक्षु भाइयों ने कि गुरुदेव ने बूढ़ी बहुत बढ़िया दिया, बताओ भाई क्या बूढ़ी दिया? गुरुदेव ने कहा कि हमको तो समय समय पर ज्ञान ही जानने में आ रहा है, यही नहीं ज्ञान जानने में आ रहा है। बाद में आधी मिनट के बाद में कहा, अरे ज्ञायक ही जानने में आ रहा है भाई साहब, समझे? और दूसरे आधी मिनट के बाद, अभी बोनी देने का आया, अभी बोनी देने की बाकी है, क्या बोनी दिया? अरे आप सबको भी ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, आप सबको विश्वास नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है। वो वहां तर्क उठाता है कि जो ज्ञान जानने में आवे, ज्ञायक जानने में आवे, तो अतींद्रिय आनंद आना चाहिए, तो अतींद्रिय आनंद तो आता नहीं है, तो मैं ज्ञायक जानने में आवे आ गया है ऐसा भ्रम में रह जाता हूं, तो अतींद्रिय आनंद आना चाहिए। वो तर्क तो ठीक है, उसका उसका तर्क तो ठीक है, मगर ज्ञायक जानने में आ रहा है ऐसा विश्वास श्रद्धा प्रतीति कहाँ है? जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति का कबूल कर ले तो एक समय में अनुभव हो जाता है। हाँ, अभी प्रश्न उठा वहां राजकोट में, चंदूभाई डॉक्टर ने प्रश्न उठाया कि ये बात चलती थी कि पर्याय में सबको ज्ञायक का अनुभव आ रहा है, तो शास्त्र में 15वीं गाथा में आता है कि वो सामान्य का तिरुभाव होता है, और 11वीं गाथा में भी आता है कि तिरुभाव होता है ज्ञायक का, तो आप यानी कुमकुंद आचार्य भगवान फरमाते हैं कि ज्ञायक जानने में आता है, तो तिरुभाव और जानने में आता है, उसमें क्या है फर्क, समझ में आया? तो जानने में आवे तो तिरुभाव भाव शब्द लागू नहीं पड़ता है, उन्हें तिरुभाव होता है तो जानने में आता है वो लागू नहीं पड़ता, दो में एक है, विरोधी बात है। मैंने कहा कि दो ही बात सत्य है, अरे दो ही बात सत्य, हाँ दो ही बात सत्य है, कैसे? कि पर्याय में ज्ञायक का प्रतिभास होता है, प्रतिभास को उपयोगात्मक नहीं करता है तो तिरुभाव हो जाता है। ये बात 15-17 साल पहले वाकानेर की पासे एक तालाब है, डैम, वहां हम फरने को रविवार को गया था, तब शशि भाई 15-17-18 वर्ष पहले कि गायक का प्रतिभास होता है मगर प्रतिभास को उपयोगात्मक नहीं करता है, स्वग्रही को उपयोगात्मक नहीं करता है तो अनुभूति हो, और वो जानने में आता है, प्रतिभास तो उसका हुआ, उसका भी होता है ना, आत्मा का भी होता है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है कि नहीं, तो उसका जो प्रतिभास हुआ उसको उपयोगात्मक कर लिया तो अध्योषण हो गया, अरे गायक का उपयोगात्मक कर लिया तो सम्यक ज्ञान हो गया, इतनी ढेर है। करना तो गया, राग का करना गया, राग को जानने के लिए छोड़ दे एक तपे, हैदराबाद में गुरुदेव ने कहा बाबूभाई गया है 1 बजे दर्शन करने के लिए, बाबूभाई हाजिर है, इसकी हाजिरी में बात में करता हूँ, गैर हाजिरी में नहीं। मैं भी गया था मगर वो दर्शन करने को गया, मैं बैठा था। तो दर्शन करने गया तो गुरुदेव के पास दर्शन करके वो उठते थे, बाबू भाई उठा उठा हुआ तो गुरुदेव ने कहा बैठो बैठो। बाबू भाई तो पक्का जेवरी कि कुछ माल मिलने वाला है, गुरुदेव ने बिठाया तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तो बाबू भाई ए राग जानवामा आवे छे ये अज्ञान छे। तो बाबू भाई ने वहां ऐसा तर्क नहीं उठाया कि 12वीं गाथा में राग जानेला प्रयोजन है, ऐसा बाबू भाई ने वहां तर्क नहीं उठाया, क्योंकि शास्त्र ज्ञान तारते भी है और अपनी योग्यता से वो डुबाते भी है। योग्यता शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं, क्या कि राग को जानना ज्ञान है ऐसा कहा। वहां उसने ऐसा तर्क नहीं उठा कि 12वीं गाथा मैंने पढ़ी है सुनिए, राग को जानना व्यवहार है, आप कहते हैं कि राग को जानना ज्ञान है, ये सब मार्मिक बात समझ समझ कर अपना कल्याण कर लेना चाहिए, और कुछ है नहीं, अपेक्षा समझनी चाहिए। बोलो, बहुत अंतर है। एक दृष्टांत दूं तो ख्याल में आवे आपको, दृष्टांत स्थूल है, दृष्टांत तो एक देश स्थूल होता है, वो बात तो अति सूक्ष्म है, अपनी निकली है बात। यशपाल जी ये बात तो बहुत सूक्ष्म है। एक भाई जयपुर की बाजार में, जवेरी बाजार में चले जाते थे, सामने उसका रिश्तेदार कोई मित्र मिला तो उसने उसको उतावल थी जाने वालों को, तो उसने कहा जय जिनेन्द्र, तो उसने कहा जय जिनेन्द्र, चलते चलते रुका नहीं, काम बड़ा था जरा। दूसरा भाई मिला कि ओ भाई मिला आपको कि नहीं हमको तो नहीं मिला, अरे आपके सामने जय जिनेन्द्र क्या और मिला नहीं, मेरा ख्याल नहीं था, मेरा ख्याल नहीं था। तो प्रतिभास तो होता है मगर वहां लक्ष्य नहीं है, वहां लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य इधर है, यह जानने में आता है, उसको जानता हूं उसको जानता हूं, तो ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव हो गया, अज्ञान हो गया, सामान्य भाव का तिरोभाव हो गया। 15वीं गाथा में गुरुदेव का व्याख्यान हुआ था राजकोट में, ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव की बात किया, अरे दूसरे को जानने के लिए एक दफे अंधा बन जा, एक दफे अंधा बन जा तो आत्मा का दर्शन होगा। वहां ऐसा नहीं कहते थे कि पर को जान पीछो आत्मा को, पर जानने में आता नहीं है, बंद कर दे। और 114 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, वो तो फरमाते हैं कि आत्मा की दो आंख, एक द्रव्यार्थिक नहीं एक पर्यार्थिक नहीं, दो चक्षु है, क्योंकि आत्मा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है, सामान्य और विशेष आत्मक पदार्थ होने से उसकी दो चक्षु है, तीसरी चक्षु ही नहीं है कि पर को जानू, वहां तो ऐसा लेते हैं, वो गुरुदेव का व्याख्यान है। ओ तीसरी आंखें नहीं है, देवगुरु का शास्त्र को जानता है, अभी वो आंख बंद कर दे, वो विषय ही नहीं है, वो विषय ही नहीं है, क्योंकि सामान्य विशेष जिसको आत्मा का कल्याण करना हो इसकी बात है, लड़ाई करनी है उसकी बात है नहीं। आत्मा का स्वभाव सामान्य विशेषात्मक है, तो सामान्य को जानने वाली एक चक्षु द्रव्यार्थिक नहीं और विशेष को जानने वाली एक पर्यार्थिक नहीं, दो चक्षु है, तो दो चक्षु है इसमें से एक चक्षु अनादि काल से उसने बंद रखी है और एक पर्यार्थिक नहीं की चक्षु खुली रखी है, तो वो खुली आंख से नर नारक आदि पर्याय और सिद्ध पर्याय से पर्याय का ज्ञान में वो रुक गया है, तो आचार्य भगवान ने कहा कि अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो क्या करना कि पर्यार्थिक नई की आंख सर्वथा बंद कर दे, कथनचित बंद कर दे ऐसा भी नहीं, उसको गौण कर ऐसा भी नहीं। अध्यात्म की बात अपूर्व रहती है। सर्वथा बंद कर दे तुम, और द्रव्यार्थिक नई की आंख उघाड़ कर अपना भगवान का आत्मा का दर्शन कर ले। ऐसा बहुत विस्तार से 3 व्याख्यान हुआ है, अभी मेरे पास व्याख्यान आया है, मैं सुनता हूँ उसको। ओहो, क्या गुरुदेव ने दिया, अद्भुत से अद्भुत बात दिया। पर्याय को जानने की आंख बंद कर दे,
सर्वथा
बंद कर दे, प्रमत है अप्रमत है जानने के लिए जानने का बंद कर दिए कर दे, तो आदरने के लिए द्रव्यार्थिक चक्षु खुल जाएगी। करने के लिए तो बंद कर दे, पर जानने के लिए भी बंद कर दे। क्यों, अपनी पर्याय को नहीं जानना, जाने ला प्रयोजनवान, अभी रहने दे, अभी रहने दे, अभी व्यवहार को आगल मत कर, अभी व्यवहार को आगल मत कर, सच्चा व्यवहार आ जाएगा, घबराना मत। भाई साहब का शब्द है, बहुत मेरे को प्रिय लगा है, कि व्यवहार का ज्ञान होगा कि नहीं, अरे घबराना मत, निश्चय का ज्ञान कर ले, व्यवहार का ज्ञान करने का पुरुषार्थ करने पड़ेगा, नहीं सरस जानी जाता। एक दफे सामान्य का अवलोकन कर ले, विशेष का अवलोकन बंद कर दे, करना तो बंद कर दे, वो तो वहां लिया ही नहीं, जानने का बंद कर दे, आंख बंद कर दे, एक आंख बंद कर दे। तो वहां गुरुदेव ने कहा कि एक आंख बंद करूं, पर्यार्थिक नहीं कि देखने की पर्याय को आंख, तो ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान में अंधकार होगा, कभी नहीं अंधकार होगा, एक आंख खुल जाएगी तेरी। वहां गुरुदेव ने तो कहा कि पर को जानता ही नहीं है, इसलिए उसकी तीसरी नेत्र नहीं है, दो नेत्र है, क्योंकि सामान्य विशेष आत्मक पदार्थ है तो दो नेत्र है, एक नेत्र बंद कर दे सर्वथा, तो वो नेत्र खुल जाएगा, भगवान का तेरे को दर्शन होगा। ऐसी अपूर्व चीज है भैया। थोड़ा शांति से, धीरज से, गंभीरता से विचार करे तो उसको ख्याल में आए। बोलो, हो गया टाइम, 2-3 मिनट है, सब आ गया इसमें, सब आ गए, पूछने की कोई जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, अलम अलम बस बस बस, अलम अलम हो गया, अति प्रपंच ये दृष्टि का ही दोष नहीं, ज्ञान का दोष, दो ही का दोष है एक साथ में, दोष एक साथ में दो का उत्पन्न होता है और दो दोष एक साथ नाश होता है एक साथ में। विश्वास नहीं है कि भगवान आत्मा अभी जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। एक बात इसके लिए मैं बताऊं दृष्टांत से कि प्रकाश है ना, प्रकाश और दीपक है, तो प्रकाश यानी प्रकाशक अभेद होता है, प्रकाश यानी प्रकाशक अभेद होता है, प्रकाश इधर ने प्रकाशक इधर, ऐसा होता प्रकाश और प्रकाशक जैसे अभेद होता है, ऐसे ज्ञान और ज्ञायक दीपक की भांति अभेद होता है, तो ज्ञायक जानने में आता है, जो ज्ञायक जानने में ना आवे पर्याय में ज्ञान की पर्याय, तो पर्याय जड़ बन जाती है। न्याय समझ में आया कुछ, ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञायक का प्रतिभास न हो तो ज्ञान की पर्याय जड़ हो जाती है, क्योंकि सामान्य विशेष कि एकता है, भिन्नता नहीं है, अनन्य है, लक्षणों लक्ष्य अभेद हो रहता है। हाँ, न्याय की बात है कि नहीं? बहुत सरस भैया, ये सर्वज्ञ भगवान ने कही हुई बात फिरने वाली नहीं है, और संतों ने जो लिखी है अनुभव से फिरने वाली नहीं है। जगत को फिरना पड़ेगा, गुरुदेव से फरमाता था। हाँ, और फिरने लगा जगत, आस्ते आस्ते फिरने लगा, और आगे तो बहुत बढ़ेगा। थोड़ा टाइम एक्शन रिएक्शन तो होता है, बाकी आगे तो बहुत थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तो गौण कर देना, बाकी बहुत बढ़ेगा, उसमें शंका नहीं है। वो सच्चा हीरा का व्यापार है, खोटा हीरा का व्यापार है ही नहीं, उसका घराग निकलेगा। ऐसा हमको लगता है। वो कबीरवड़ है, उसका मुड़िया ऊंडा है, उसका सत का मुड़िया ऊंडा है। 45 वर्ष से उसने सत का पानी पाया, ऐसा वडला। हा हा, वड़ का जाड़ बहुत फैलाता है, वड़ का जाड़ फैलाता है। ये बात नहीं आ तो राग नी अस्थिरता नो राग कह रहे तो नहीं, एटली बात छे। परिणति मां बाधक तत्व कह रहे तो नहीं, ये बात छे। पछी केवल ज्ञान थाय एटले लोकालोक ने जाने एवो व्यवहार, तो ज्ञान नी पर्याय नो सपर प्रकाशक स्वभाव जाय क्या? एनो अभाव थतो नहीं। हे हा, बराबर छे, ठीक छे, वात छे। એ સ્વપ્રકાશક ની સાથે સ્વપર પ્રકાશક છે, એ કેતાર્યો એમ અમારા મિત્ર કહે છે, વાત સાચી છે। બીજા એક અમારા મિત્ર એ પણ કહ્યું હતું, એ જ શબ્દો કયા હતા। લાલુભાઈ થોડુંક તમે નિશ્ચય ની આરે વ્યવહાર નું પ્રતિપાદન જો કરો। બે મિત્ર, બે હા, લોકોને એમ થાય એટલે ચોખવટ માટે, બરાબર છે। આ તો સાધક ની વાત એમ કરી કે જયારે પર્યાય પરિપૂર્ણ યથાખ્યા ચારિત્રે પહોંચી જાય ત્યારે એને રાગ પર્યાય નો રહેતો નથી। એમ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ની પરિપૂર્ણ અવસ્થા થઈ જાય કેવળ જ્ઞાન, ત્યારે ક્ષોભસમ જ્ઞાન ની પર્યાય નો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નો વ્યવહાર રહેતો નથી। તે અપેક્ષા એ આ વાત મેં અંદર ને અંદર માં કરી, બહુ નજર બહાર જાતી નથી એટલે ઓલી વાત થોડીક ઓછી આવે છે, વાત સાચી છે। એ વર્તુળમાં રહેવામાં મજા છે, દ્રવ્ય ને પર્યાય એટલું જ વર્તુળ છે। એ જાણ્યા કર સાદી અનંત કાળ જાણ્યા કર ને તારા વર્તુળમાં રહીને ઓલું તો જણાઈ જાય છે, ને આને તો આત્મા જાણે છે। એમ લ્યો આ મુરબી આપણા વડીલ, આપણા શિક્ષા ગુરુ છે બધાના, રામજીભાઈ ને કેમચંદ ભાઈ, બે આપણને શીખડાવતા હતા ને જે હકીકત છે એનો કેમ નકાર કરાય? સજ્જન કઈ ઉપકાર ને ઓળવે નહી, ઠીક છે, વાત સાચી છે, એની અપેક્ષા એ બરાબર છે, સાચી વાત છે, એકદમ સાચી વાત મુરુભી, એકદમ સત્ય, પરમ સત્ય છે। એનો જ આ બધો વૈભવ છે, હો આ ગુરુદેવ નો વૈભવ દેખાય છે। એક વ્યક્તિ પાકી, આ હા, એકલે હાથે, અને ચક્રવર્તી તો એકલે હાથે છ અખંડ ને સાધે ભાઈ, અખંડ સાધો તો બરાબર છે, અખંડ સાધીને અખંડ નો ઉપદેશ મુખ્યપણે આપ્યો, એને શુદ્ધની નો ઉપદેશ આપ્યો, જે વિરલ હતો હિંમતભાઈ, શુદ્ધની નો ઉપદેશ ભારતમાં નહોતો બિલકુલ। હા હા, હજી એ બીજે ક્યાં છે? એક સોનગઢ ના વર્તુળ માં છે, આપણે બધા સોનગઢ વાળા જ કહેવાય ને, ભલે સોનગઢ માં રહેતા ના હોય પણ આપણે આ સોનગઢ વાળા આવ્યા એમ જ કહે ને, બધા રાજકોટ થી આવ્યા ન કહીએ, જયપુર થી આવ્યા એમ ન કહીએ, આ સોનગઢ આવ્યા, વાત તો સાચી છે। અને એ સોનગઢ વાળા કે એ સાંભળે ને આપણે મગરૂપ થઈએ છીએ, ભલે અમને સોનગઢ વાળા તમે કયો, અમારે સોનગઢ વાળા જ રહેવું છે, हैं, अभिनंदन छे। हमें राजकोट वाला ने, अहमदाबाद वाला ने, मुंबई वाला ए भेद मा जवू नथी, हमें बधा सोनगढ़ वाला छे। एक आवाज होवो जोईए आ राजकोट वाला ने, આ મુંબઈ વાળાને, આ વાંકાનેરને, આ મોરબી, ભેદને છોડી દો વ્યવહારમાં, પણ નિશ્ચયને અંગીકાર કરો કે બધા સોનગઢ વાળા છે। કેમ કે બધાના ગુરુ એક છે। હા, ભેદને પાડવા બરાબર છે। હા, વાત સાચી છે। શું કહે છે આચાર્ય ભગવાન, એક સુંદર વાત નિશ્ચયની, અનંત કાળથી સાંભળી નથી, તને સંભળાવું છું। મેં ઘણી વાત કરી છે, પણ હજી એક થોડી ટૂંકી વાત મને કહેવાનો મન થઈ જાય છે। જ્યારે હું તને એક જ વાત નિશ્ચયની જ્યારે ફરી ફરીને 10 વખત 20 વખત કહીશ ને, ત્યારે તને થોડી ખ્યાલમાં આવશે। હજી જો પૂરું ખ્યાલમાં આવે તો તો ન્યાલ થઈ જાય। શ્રી ગુરુ વારંવાર કહે છે, પાઠ છે, શ્રી ગુરુ વારંવાર કહે છે, ત્યારે ગુરુદેવ કહે, નિરંતર સમજાવવામાં આવતો ત્યારે ગુરુદેવ એનો અર્થ કરે કે શું ગુરુ નવરા છે કે વખત વખત કયા કરે 24 કલાક। એનો અર્થ એમ છે કે જે ગુરુએ વારંવાર સમજાવ્યું છે શુદ્ધાત્મ તત્વ, એનું 24 કલાક તારે ગોલન કરવું, એને વારંવાર સમજાવે છે એમ કહેવામાં આવે છે। વળી તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે, વિવક્ષિત એક દેશ સુધી નહીં આશ્રિત આ ભાવના। વિવક્ષિત એટલે કેવા ધારેલી, એક દેશ શુદ્ધ નહીં આશ્રિત એટલે શુદ્ધ આત્માના આશ્રયમાં જતા થોડોક ભાગ આશ્રય થયો છે, પૂર્ણ આશ્રય આવ્યો નથી, ઉગ્ર પુરુષાર્થ થયો નથી, અલ્પ પુરુષાર્થ છે। મુનિરાજ કહે છે કે અમારો પુરુષાર્થ હજી અલ્પ છે। હા, તો ચોથા ગુણસ્થાનની વાત તો આ તો મુનિરાજ કહે છે હો, કે વિવક્ષિત કેવા ધારેલી, એક દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત આ ભાવના, જે આ ભાવના અમને પ્રગટ થઈ છે એ સર્વ દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત નથી પ્રગટ થઈ, એક દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત છે। થોડો ભાગ જ્ઞાનનો અંદરમાં વળીને અભેદ થાય છે, ને બાકીનો જ્ઞાન હજી એવો અભેદ થઈ શકતો નથી। એક દેશ શુદ્ધ કહ્યું ને, સર્વ દેશ શુદ્ધ હજી નથી પ્રગટ થયું, એવી પ્રગટ દશા છે। અમને જ્ઞાન વર્તે છે અને એના વિષયનું પણ જ્ઞાન વર્તે છે, બેયનું અમને જ્ઞાન વર્તે છે, પણ અમારી અહમ બુદ્ધિ ક્યાં છે અને તારે પણ અહમ બુદ્ધિ ક્યાં કરવી, એ અમારા અનુભવથી તને કહીએ છીએ, બતાવીએ છીએ, તું જરા ધ્યાન ખેંચજે, આ તારા ઉઘાડને તું આગળ કરીશમાં એમ કે છે। અમે અમારા અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના ઉઘાડને આગળ કરતા નથી, એક દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ સાથે પ્રણતિ વિતરાગતાની જેટલી હોય એટલે અંદર અવિના ભાવ રૂપે લઈ લેવી, જ્ઞાનથી મુખ્યતાથી વાત કરે છે। કેમ કે જ્ઞાનથી જીવો સમજી શકે છે, સમજનારા પણ સમજી શકે ને સમજાવનાર પણ જ્ઞાનની પ્રધાનતાથી સમજાવે છે। કેમ કે આત્માનું અસાધારણ લક્ષણ જ્ઞાન છે, આખા સમયસારમાં જ્ઞાન કહો કે આત્મા કહો, આત્મા કહો કે જ્ઞાન કહો, કહે છે કે એક દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત આ ભાવના। આ ભાવના એટલે સમ્યક દર્શનાન ચારિત્રના જે પરિણામ પ્રગટ થયા એને ભાવના આગળ કહેવાય ગયું છે, અર્થાત કહેવા ધારેલી આંશિક શુદ્ધિ રૂપ આ પ્રણતિ હવે એને વિશેષ જ્ઞાનમાં ઉતારી નાખે છે। ઓમાં પ્રણતિમાં તો ભાવનામાં ત્રણે આવી જાય, હવે જ્ઞાનની પ્રગટ પર્યાયથી સમજાવે છે કે નિર્વિકાર સસંવેદન લક્ષણ સૌક્ષમિક જ્ઞાન રૂપ હોવાથી જ્ઞાન જ્ઞાનની વાત કરે છે। હા, જ્ઞાનથી સમજાવે છે બીજાઓને કે અમને થોડું આત્મા આશ્રિત અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું છે, જે નિર્વિકાર છે, જે રાગ દ્વેષના મલિન પરિણામથી રહિત છે, અને જે અંશ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના ભાવ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના ઉઘાડથી પણ ભિન્ન છે। રમણીભાઈ આમ જાણું, હા હા હા, આક્ષોપસમ જ્ઞાન આત્મા આશ્રિત લેવું, ઓલું પરતત્તા અવલંબનશીલ જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે ને એને એનાથી જુદું પાડવું, ભેડસેડ ન કરવું. શુદ્ધ જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન વચ્ચેનો ભેદ, એક સ્વ આશ્રિત શુદ્ધ જ્ઞાન ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન, અને એક પરાશ્રિત જે જ્ઞાન છે એ દ્રવ્ય શુદ્ધ જ્ઞાન છે. એક દ્રવ્ય શુદ્ધ અને એક ભાવ શુદ્ધ, એ બે અંશ સાધક ને પ્રગટ થઈ ગયા છે. એ દ્રવ્ય શુદ્ધ માં જાય ઓલું. અદભુત થી અદભુત ટીકા. થોડો અભ્યાસ હોય તો એ તો ડોલે, હો બંસીના નાદ થી સરપ ડોલે, એમ થોડો અભ્યાસ હોય તો વધારે મજા. રતિભાઈ અભ્યાસ તો કરવો પડશે બધાએ, કેમ આપણા હિતે માટે. સૌ કરે છે, અભ્યાસ નથી કરતા એમ મારું કેવું નથી, સૌ પોતપોતાની રીતે પુરુષાર્થ તો કરે છે, પણ વિશેષ પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. જેટલો પુરુષાર્થ છે એનાથી પ્રાપ્તિ થઈ ન હોય તો હવે વિશેષ પુરુષાર્થ ઉપાડવાની જરૂર છે. એક દેશ શુદ્ધ નાશિત આ ભાવના નિર્વિકાર, એમાં વિકૃત ભાવ નથી રાગ દ્વેષ નો. અને મળ જનિત ક્ષોભસમ જ્ઞાન, ક્ષોભસમ ઇન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાન, મળ જનિક એ ભાવ ઇન્દ્રિય નો પણ એમાં અભાવ છે. મળ જનક ક્યાં કહ્યું તો ક્ષોભસમ જ્ઞાન આવ્યું હતું ને ભાઈ, ગુરુદેવ લીધું હતું, લીધું હતું ગુરુદેવી, હે ટેપમાં લીધું હતું, એવું હતું. મળ જનક ક્ષોભસમ જ્ઞાન છે કે જા એ મારું નહીં, એ અંશ મારો. વિશેષણ વાયપરા બરાબર છે. એક દેશ શુદ્ધ નયાશિતા ભાવના નિર્વિકાર, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિકૃતિ નથી, રાગ દ્વેષ નો એમાં અભાવ છે, ભાવ ઇન્દ્રિય ખંડ જ્ઞાન નો પણ આમાં અભાવ છે. બે પ્રકારના સમ્યક શુદ્ધ જ્ઞાન ની વાત કરી, બે પ્રકાર સમ્યક શુદ્ધ જ્ઞાન છે, પણ જ્ઞાન બે પ્રકાર, એક ભાવ શુદ્ધ ને એક દ્રવ્ય શુદ્ધ નો અંશ ને ભાવ શુદ્ધ નો અંશ. ભાવ શુદ્ધ ના અંશમાં દ્રવ્ય શુદ્ધ ના અંશ નો અભાવ છે. નિર્વિકાર સ્વ સંવેદન લક્ષણ, સ્વ સંવેદન લક્ષણ, પોતે પોતાથી પોતાને જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જાણે એવા લક્ષણ થી લક્ષિત ક્ષોભસમ જ્ઞાન. સ્વ સંવેદન લક્ષણ, પોતે પોતાથી પોતામાં રહીને ભેદને છોડીને અભેદ ભાવે જે જ્ઞાન આત્માને જાણે ને અભેદ થઈને જાણે. સમ્યક પ્રકારે વેદન જાણવું અને વેદું બે જેમાં સાથે છે, આનંદને વેદે છે એ જ્ઞાન, આનંદની અનુભૂતિ વાળું લસ લસતું જ્ઞાન છે. જેમ શીરો ઘી થી લસ્ત લસતો હોય એમ આ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય આનંદ થી લસ લસતું સ્વસંવેદન જ્ઞાન છે. ભલે એના આટલા વખાણ કરવામાં આવે પણ એ હું નથી, હું તો અખંડ જ્ઞાન. ત્યાં આપણે જવું છે, હજી ત્યાં જવું. દેવચંદજી ઠેઠ સહરાનપુર ત્યાં આવ્યા, ક્યાં સહરાનપુર, ખબર પડ્યા કે રાજકોટમાં આ શિબિર છે, રાજકોટની છાપ તો બહારથી પહેલેથી ગુરુદેવના પ્રતાપે સારી છે ને, કે ત્યાં અધ્યાત્મની વાતો કઈ સારી હશે. સોનગઢ પછી, સોનગઢ પછી રાજકોટનો નંબર આવે અધ્યાત્મ. હિંમતભાઈ હેજી નવન આવો, બરાબર છે, સોનગઢ ના છીએ અમે, બસ બરાબર, એક બે નહીં, ઠીક ઠીક. નિર્વિકાર સ્વ સંવેદન, કલમ ચલાવી છે, કઈ કલમ ચલાવી છે, પર્યાય ની વાત કરે છે. હજી જેનો નિષેધ કરવો છે એને થાપે છે, થાપીને પછી મારું એમાં લક્ષ જ નથી ને. એ ખંડ જ્ઞાન તેવું નહીં, ખંડ જ્ઞાન તેવું, ખંડ જ્ઞાન નું જ્ઞાન કરાવે છે પણ ખંડ જ્ઞાન નો અમને અવલંબન નથી. ખંડ જ્ઞાન હોય એટલે અમારે એને અવલંબન લેવું પડે એમ નથી. ભલે ખંડ જ્ઞાન છે, અમને ખંડ જ્ઞાન નું જ્ઞાન છે, ખંડ જ્ઞાન છે, એક દેશ શુદ્ધ ન્યાસી તમને ખબર છે, એક સૂક્ષ્મ જ્ઞાન છે ખબર છે, ક્ષાયિક થયું નથી ખબર છે, નિર્વિકાર છે એ અમને ખબર છે, બધી અમને ખબર તો છે, જાણીએ છીએ અમારા જ્ઞાન ની પ્રગટ અવસ્થાને. પારેખભાઈ ખુશ ખુશ થઈ ગયા. હા, આત્માની વાત છે ને, આ તો પોતાની ખરી, પોતાના ઘરની વાત છે ને, આ તો પોતાના આત્માની ઘરની વાત છે. વિકથાની તો અહીંયા સખત મનાય છે. રતિભાઈ બોર્ડ માર્યું છે બહાર. હા, વિકથાની સખત મનાય. આત્મકથા ધર્મકથા નું આ સ્થાન છે. કે છે નિર્વિકાર સસંવેદન લક્ષણ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન રૂપ હોવાથી, જો કે એક દેશ વ્યક્તિ રૂપ છે, એક દેશ સર્વદેશ વ્યક્તિ તો કેવા જ્ઞાન કહેવાય, આ તો એક દેશ વ્યક્તિ એટલે પર્યાયની પ્રગટતા, પર્યાયની વર્તમાન પ્રગટતા એને એક દેશ વ્યક્તિ કહ્યું. સર્વદેશ વ્યક્તિ પ્રગટ થવાની છે, અમને પ્રતીતમાં છે, પણ સર્વદેશ વ્યક્તિ અત્યારે પ્રગટ થઈ નથી, પ્રગટ થશે, એ શ્રદ્ધાને જ્ઞાનમાં વર્તે છે, પણ એ અત્યારે હજી પ્રગટ થઈ નથી દશા. પણ જે પ્રગટ છે અત્યારે વ્યક્તિ, એક દેશ વ્યક્તિ રૂપ છે તો પણ, હા હા, જોઈ લેજો આ ભાવલિંગી સંતની અંતર મસ્તીના શબ્દો ને એમાં ભાવો કેટલા ભેરા છે. હજી તો જ્યાં થોડો શુભ ભાવ આવ્યો ને પુણ્ય ભાવ આવ્યો મેં કર્યો. હા હા, હવે આ કે છે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન નો અંશ પ્રગટ થઈ ગયો, છતાં પણ મારો છે એમ અમને એમાં મારાપણાની બુદ્ધિ થતી નથી. વ્યવહાર નહી મારો છે, પણ નિશ્ચય નહી, મારો તો ભગવાન અખંડ આત્મા છે. અખંડ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખતો, ખંડ નું જ્ઞાન કરતો હોવા છતાં ખંડમાં આત્મબુદ્ધિ નહીં કરતો ને અખંડ માંથી આત્મબુદ્ધિ નહીં છૂટતો, એ સાધક થઈ જાય છે. સાધક થઈ જાય છે, સાધક રહી જાય છે, અને પરમાત્મા અલ્પકાળમાં થઈ જાય છે. એમાં જામે છે આ દશા એવી છે. અલૌકિક આ ભાવલિંગી સંત દિગંબર મુનિઓની કથની એના તીખા વચન, ઓહો હો હો, ભાવથી ભણે અલ્પકાળમાં એને મુક્તિ થાય, અને મુક્તિ થશે એવા ભણકાર પૂર્વ ભૂમિકામાં પણ આવી. નિર્વિકાર સ્વસંવેદન લક્ષણ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન રૂપ હોવાથી, જો કે એક દેશ વ્યક્તિ રૂપ છે, અમને પર્યાય નું જ્ઞાન છે, ઓ દ્રવ્યના જ્ઞાન સાથે પર્યાય નું જ્ઞાન અમને વર્તે છે, અંદરનું સ્વપ્ર પ્રકાશક જ્ઞાન પણ છે, અને બે ને એક સાથે જાણીએ છીએ એટલે અધ્યાત્મ પ્રમાણ જ્ઞાન પણ અમને વર્તે છે. અધ્યાત્મ પ્રમાણ ની વાત, કેમ કે ત્રિકાળ શુદ્ધ અને વર્તમાન ક્ષણિક શુદ્ધ બે ને જાણવું એનું નામ અધ્યાત્મ પ્રમાણ. રાગ ને હારે ભેળવો તો આગમ પ્રમાણમાં જાય છે. એક દેશ વ્યક્તિ રૂપ છે તો પણ જાતા પુરુષ એટલે ધ્યાન કરનારો પુરુષ, ધ્યેય નું ધ્યાન ધ્યેયના ધ્યાનમાં પડેલો પુરુષ, જાતા પુરુષ એમ ભાવે છે કે